mentioned. Group member,
chair.
बाप दादा द्वारा हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। यह दिव्य बुद्धि का वरदान सभी ने अपने जीवन में कार्य में लगाया है, क्योंकि वरदान का लाभ तब होता है जब वरदान को कार्य में लगाए। तो दिव्य बुद्धि का वरदान मिला सबको है, लेकिन यूज कितना करते हो? कोई भी चीज यूज करने से, कार्य में लगाने से बढ़ती भी है और उसको सुख की, खुशी की अनुभूति भी होती है। तो दिव्य बुद्धि को कार्य में कहां तक लगाते हैं, उसकी निशानी क्या होगी? सफलता होगी। हर कार्य दिव्य अलौकिक अनुभव होगा, साधारण नहीं, क्योंकि कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। तो दिव्य बुद्धि की निशानी है हर कर्म में दिव्यता। ऐसा अनुभव करते हो या कभी साधारण कर्म भी हो जाते हैं? तो बाबा कह रहे हैं हर एक बच्चे को दिव्य बुद्धि का बाबा ने वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि एक लिफ्ट है। कैसी लिफ्ट है? जो एक सेकंड त्रिलोक की सैर करा सकती है। जिस स्थान पर जितना समय स्थित होना चाहो उतना समय उस स्थान पर स्थित हो सकते हो। यह लिफ्ट अद्भुत है, वंडरफुल है, शक्तिशाली है, पावरफुल है, सहज है। स्मृति का स्विच ऑन करो तो ये लिफ्ट अमृत वेला ध्यान पूर्वक केयरफुल होकर यथार्थ रीति से स्मृति के स्विच को सेट कर दो तो ये लिफ्ट सारा दिन ऑटोमेटिक चलती रहेगी। इस लिफ्ट को चलाने की विधि है अधिकारी बन, अथॉरिटी बन, अमृत वेला। इस लिफ्ट को सेट करो, हर कर्म में कार्य में लगाओ तो ये लिफ्ट चालू रहेगी, कभी अटकेगी नहीं, कभी धोखा नहीं देगी, कभी रुकेगी नहीं, सदा ही कार्य करेगी। तो बाबा कह रहे ये दिव्य बुद्धि का वरदान तुम्हें प्राप्त है। दिव्य बुद्धि का वरदान सबको मिला है, लेकिन यूज कितना करते हो? कोई भी चीज यूज करने से, कार्य में लगाने से बढ़ती भी है और उसको फिर क्या हो जाता है? खुशी, सुख की अनुभूति होती है और उसकी निशानी है दिव्य सफलता। हर कार्य कैसे हो जाता है? दिव्य होता है, अलौकिक होता है, असाधारण हो जाता है, साधारण नहीं, क्योंकि कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। तो दिव्य बुद्धि की निशानी है हर कर्म में दिव्यता। ऐसा अनुभव करते हो या कभी साधारण कर्म भी हो जाते हैं? दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं सदा अदिव्य को भी दिव्य बना देती है। अदिव्य, अदिव्य, साधारण, अलौकिक। तो वो क्या करती है? लौकिक को भी अलौकिक बना देती है, साधारण को भी असाधारण बना देती है, अदिव्य को भी दिव्य बना देती है, व्यर्थ को भी समर्थ बना देती है, नकारात्मक को भी सकारात्मक बना देती है, निकृष्ट को भी उत्कृष्ट बना देती है, श्रेष्ठ बना देती है। ये सब कार्य करती है दिव्य बुद्धि। जैसे गाया जाता है कि पारस अगर लोहे को लगता है तो वह भी पारस बन जाता है, तो दिव्य बुद्धि अर्थात पारस बुद्धि ऐसे बने हो, क्योंकि बुद्धि हर बात को ग्रहण करती है और दिव्य बुद्धि क्या ग्रहण करेगी? दिव्यता को। दिव्य बुद्धि दिव्यता को ही ग्रहण करेगी। ऐसा परिवर्तन कर सकते हो, अदिव्य को भी दिव्य बना सकते हो, व्यर्थ को समर्थ, निगेटिव को पॉजिटिव, लौकिकता को अलौकिक,
डिवाइन को डिवाइन।
अनडिवाइन को डिवाइन। तो ये दिव्य बुद्धि का काम है। अब प्राप्ति में भी प्राप्ति, यह अदिव्यता का प्रभाव पड़ जाता है। अदिव्यता का प्रभाव, कोई अदिव्य बात हो जाए, अदिव्य कार्य हो जाए, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। दिव्य बुद्धि के वरदान से परिवर्तन शक्ति अदिव्य को भी दिव्य के रूप में बदल देगी, असुंदर को भी सुंदर, अदर्शनीय को भी दर्शनीय मूर्त बना देगी, कुरूप को भी सुंदर बना देगी। अदिव्य वातावरण, अदिव्य चलन, बोल दिव्य बुद्धि के ऊपर असर नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति वाले को भी दिव्य बुद्धि वरदानी मूर्त कहा जाएगा। जैसे वाटर प्रूफ होता है, आग प्रूफ होता है, साइंस के साधन वाटर प्रूफ बना देते हैं, आग प्रूफ बना देते हैं। तो साइलेंस की शक्ति परिवर्तन नहीं कर सकती है, प्रूफ नहीं बना सकती है। नॉलेज रखना और चीज है, यह दिव्य है यह अदिव्य है, ये नॉलेज है, लेकिन प्रभाव में आना और चीज है। दिव्यता ही, दिव्यता की शक्ति श्रेष्ठ है या अदिव्यता की शक्ति श्रेष्ठ है, साइंस श्रेष्ठ है या साइलेंस श्रेष्ठ है। तो दिव्यता का प्रभाव अदिव्यता पर पड़ना चाहिए ना। तो अभी दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाओ। लगाना तो आता है ना यार, कभी भूल जाते हो, आधा कल्प भूलने वाले बने, लेकिन अभी
अबुल
भूल बनना है।
अबुल
दिव्य बुद्धि ऐसा श्रेष्ठ यंत्र है, डिवाइस है एक, क्या करता है, जो इस यंत्र द्वारा व्यक्ति तो क्या, प्रकृति को भी दिव्य बना सकते हो। तो दिव्य बुद्धि की निशानी सुनी, सफलता, हर कार्य में दिव्यता, दिव्य बुद्धि दिव्यता को ग्रहण करेगी। और यहाँ कहा व्यक्ति तो क्या, प्रकृति को भी दिव्य बना सकते हो। व्यक्ति को दिव्य बनाने से प्रकृति के ऊपर स्वतः ही प्रभाव पड़ जाएगा। पहले अपने में देखो कि सदा दिव्य बुद्धि इमर्ज रूप में है, इतनी ताकत है जो प्रकृति को भी परिवर्तन कर दो। ये परमात्मा वरदान है। किसका वरदान है? परमात्मा वरदान है, कोई महात्मा या धर्मात्मा का वरदान नहीं है। वो धर्मात्मा है, वो महात्मा है, वो भी अदिव्य को दिव्य बना देते। आज उदाहरण दिया बाबा ने सेंट फ्रांसिस जेवियर का, मुरली में उसको भी भावना का भाड़ा मिलता है। उसकी भी अभी तक, उसका भी शरीर अभी तक रखा हुआ है, गोवा में रखा हुआ है। बाबा ने कहा उसके पैरों को छूते हैं तो बीमारी ठीक हो जाती है, वहां तो ढेर लग जाते हैं, यहाँ ढेर नहीं लगते मेरे पास, उसके पास ढेर लग जाते हैं पर यहाँ ढेर नहीं लगते। उसके पैर दिखाते, पैर भी दिखाते हैं, और किसी ने तो उसका एक हाथ 100 साल के बाद डिटैच करके और एक अलग जगह रखा है म्यूजियम में, तो वहां पर भी कई लोग जाते हैं। उसे संत की पदवी मिली है, कैनोनाइज एंड बैप्टाइज बाद में होता है, तो वहां पे ढेर लग जाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ ढेर नहीं लगते, यहाँ ढेर लगने की जगह भी नहीं है, और जब ढेर लगने का समय आता है तो विनाश हो जाता है। तो वो है महात्मा, वो भी अदिव्य को दिव्य बना देता है, वो भी बीमारियों को ठीक कर देते हैं। तो ये नहीं कर सकता है, यह परमात्मा वरदान है, कोई महात्मा या धर्मात्मा का वरदान नहीं है। साधारण मत समझना इसको। तो जैसे बाप सर्वशक्तिवान है तो
बच्चे
बच्चे नहीं वरदान, जैसे बाप सर्वशक्तिवान है तो वरदान भी सर्वशक्तिवान है ना, पर वरदान को कार्य में लगाना पड़ेगा, वरदान को यूज करना पड़ेगा। दिव्य बुद्धि है ना, ऑटोमेटिक चलती रहे, अमृत वेला सेटिंग करनी पड़ेगी, स्मृति का स्विच सदा ऑन रखना पड़ेगा, तो ही लिफ्ट सारे दिन भर ऑटोमेटिक कार्य करेगी, नहीं तो अटकेगी, रुकेगी, बंद होगी। तो जब भी कोई कार्य करते हो पहले चेक करो कि दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा कार्य कर रहे हैं या साधारण बुद्धि से कार्य कर रहे हैं। कौन सी बुद्धि से कार्य करेगा? दिव्य बुद्धि से कार्य कर रहे हैं तो सब कार्य महान होंगे, ऊंच होंगे, श्रेष्ठ होंगे, दिव्य होंगे, पवित्र होंगे, असाधारण होंगे, दिव्यता उनमें समाई होगी। आपकी दिव्यता का प्रभाव विश्व को दिव्य बना देता है। व्यक्ति और प्रकृति, प्रकृति और पुरुष, जब पुरुष पावन हो जाता है तो उसका असर प्रकृति पर स्वतः ही पड़ता है। ये सारा विश्व ही खेल है प्रकृति और पुरुष का, सांख्य शास्त्र है पुरुष और प्रकृति। आपकी दिव्यता का प्रभाव विश्व को दिव्य बना देता है। यह आपका ऑक्यूपेशन है ना, ये हमारा काम है, ये हमारा धंधा है, पेशा है, कॉमर्स, ट्रेड, बिजनेस, ये बिजनेस है, ऑक्यूपेशन। इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, क्लर्क हूं, फलाना हूं, ये ऑक्यूपेशन तो शरीर निर्वाह के अर्थ है, लेकिन वास्तविक रियल इंट्रुथ ऑक्यूपेशन है हमारा धंधा कौन सा है? विश्व को पावन बनाना, विश्व का कल्याण करना और
दिव्य को दिव्य बनाना,
विश्व को दिव्य बनाना, अदिव्य को दिव्य बनाना और विश्व को परिवर्तन करना, एकमात्र हमारा कर्तव्य है। बिजनेस है, वाणिज्य है, धर्म है, तिजारत, तिजारत कहते हैं कि विश्व को परिवर्तन करना। बाबा ने कहा ज्ञान सूर्य से किरने लेकर विश्व को देना, यही तुम्हारी एकमात्र सेवा, इसके अतिरिक्त और जो भी सेवाएं हैं सब निमित्त मात्र है। सच्ची सेवा कौन कर रहा है? जो ज्ञान सूर्य से किरने लेकर विश्व को दे, यही एकमात्र सेवा है। कोई कहता है कि मैं बहुत व्यस्त हूं, मुझे तो समय नहीं है विश्व सेवा करने के लिए, मनसा सेवा का, और बाबा की महावाक्य यही एकमात्र सेवा है, बाकी तो सब केवल निमित्त मात्र है बस। सच्ची सेवा तो यही है, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, क्लर्क हूँ, फलाना हूँ, यह ऑक्यूपेशन तो शरीर निर्वाह के अर्थ है। एक ही ट्रेड, एक ही कॉमर्स, एक ही बिजनेस, एक ही ऑक्यूपेशन, लेकिन वास्तविक ऑक्यूपेशन है विश्व को परिवर्तन करना। तो ऐसा समझकर कार्य करते हो तो क्या सुना, दिव्य बुद्धि एक ऐसा यंत्र है जो केवल व्यक्ति को नहीं प्रकृति को भी दिव्य बना देता है। अगर व्यक्ति दिव्य हो जाए तो प्रकृति पर असर स्वतः ही पड़ता है। तो पहले देखो कि सदा दिव्य बुद्धि मज रूप में है, इतनी ताकत है कि प्रकृति को भी परिवर्तन कर सको। यह परमात्मा वरदान है, कोई धर्मात्मा महात्मा का वरदान नहीं। तो जैसे बाप शक्तिशाली है, सर्वशक्तिवान है, सर्व सामर्थ्यवान है, सर्व शक्तियों का स्रोत है, वैसे उसके वरदान, उसके महावाक्य, उसके बोल, उसकी दृष्टि, उसकी वाणी, उसके कर्म, उसका सब कुछ शक्तिशाली है। तो वरदान भी सर्वशक्तिवान। जब भी कोई कार्य करते हो तो पहले चेक करो कि दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा कार्य कर रहे हो या साधारण बुद्धि से कार्य कर रहे हो। आपकी दिव्यता का प्रभाव विश्व को दिव्य बनाएगा, यही ऑक्यूपेशन है, यही बिजनेस है। विश्व को परिवर्तन करना। अगर वरदान को कार्य में लगाते हो तो वरदान की प्राप्ति सदा सहज अनुभव कराएगी। वरदान में मेहनत नहीं करनी पड़ती, वरदान प्राप्त करने के लिए मेहनत जरूर करते हैं, पर एक बार वरदान मिल गया उसके बाद में मेहनत नहीं है। तो यहाँ तो वरदान बिना मेहनत के ही मिला है और वरदान मिलने के बाद में भी कोई मेहनत नहीं है फिर। तो यह दिव्य बुद्धि वरदान है। संसार में महान आत्माएं हैं, उनके पास बहुत श्रेष्ठ बुद्धि है, वैज्ञानिक के पास श्रेष्ठ बुद्धि है, परंतु दिव्य बुद्धि नहीं है। वैज्ञानिक, कोई नेता, कोई महात्मा, बहुत श्रेष्ठ लोग है संसार में, बहुत बुद्धिमान लोग है संसार में, परंतु क्या उन्होंने भगवान को जाना, आत्मा को जाना, सृष्टि चक्र को जाना? बाप को जानना और सृष्टि चक्र को जानना, इसे ही ज्ञान घोषित किया है, कल की मुरली में था ना, बस यही ज्ञान है। आत्मा को, सृष्टि चक्र को जानना और बाप को जानना, यही ज्ञान है। इसके अतिरिक्त तो जो कुछ है सब ज्ञान है। जिसने इसको जाना उसी के पास दिव्य बुद्धि है। तो इसको जानने वाले शायद अनपढ़ होंगे, उनको लिखने भी नहीं आता होगा, पर उनके पास दिव्य बुद्धि है। वो उन वैज्ञानिकों से भी महान है, वो ही बनेंगे बड़े प्रिंस प्रिंसेस। इसके लिए माताओं की महिमा करते हैं बाबा, माताओं माता तेरे चरणों पर एक दिन संसार झुकेगा, शंकराचार्य सब आकर गिरेंगे।
हमने
तो पा लिया। तो एक 63 जन्म बहुत मेहनत कर ली, अभी मेहनत नहीं सहज। ब्राह्मण जीवन में भी अगर मेहनत करनी पड़ती है, युद्ध करनी पड़ती है, तो क्या, तो डैश डैश कब करेंगे? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कब करोगे? तो मौज कब मनाएंगे? ये मौज मनाने का युग है। सतयुग में तो पता ही नहीं होगा कि मौज भी मना रहे हैं। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि वहां कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा, तुलना करने के लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ सब कुछ है, सुख और दुख, प्राप्ति और प्राप्ति, ये सब कुछ यहाँ है। यहाँ है, यहाँ है करके हम अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए आज भी कहा भगवान ने, सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान। जो सब में समान है वो बाप की दिल को जीत सकते हैं, बाकी नहीं। तो ये कॉन्ट्रास्ट तो अभी है ना, वहां कॉन्ट्रास्ट होगा ही नहीं, यहाँ कॉन्ट्रास्ट है। सुख का भी अनुभव किया, दुख का भी अनुभव किया, लौकिक प्रेम का भी अनुभव किया, अलौकिक प्रेम का भी अनुभव किया। देख लिया लौकिक वाले भी क्या करते हैं और अलौकिक वाले भी क्या करते हैं। इस प्रेम में क्या आनंद है और उस प्रेम में क्या आनंद है, वहां कॉन्ट्रास्ट नहीं हो गया। अभी तो कॉन्ट्रास्ट है, मेहनत क्या है, मौज क्या है, दोनों का अनुभव कर लिया। तो मौज अभी है, सतयुग में कॉमन बात होगी। अच्छा, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हर बच्चे को बाबा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। इस वरदान को सदा कार्य में लगाते रहो। अगर सदा कार्य में लगाते रहोगे तो ये बढ़ता जाएगा। माया ऐसी है, कल मुरली में कहा था ना, कि बच्चों की बुद्धि को बढ़ने नहीं देती। कल मुरली में था एक वाक्य, माया ऐसी है जो बच्चों के बुद्धि को बढ़ने नहीं देती। बुद्धि को बढ़ने नहीं देती। और यहाँ बुद्धि कौन सी प्राप्त है? अलौकिक, दिव्य, असाधारण, जो कि अदिव्य को भी अदिव्य कर देती है, असाधारण को भी साधारण को भी असाधारण बना देती है, प्रेम को प्रेम बना देती है, विरोध को अविरोध में परिवर्तन कर देती है। ऐसी ये दिव्य बुद्धि है, इसको यूज करना आता है। जो इसको यूज करते उसकी निशानी वो सदा सफल होंगे। हर कार्य कैसा होगा? दिव्य अलौकिक अनुभव होगा, साधारण नहीं। जीवन से साधारणता समाप्त। बोल भी साधारण नहीं, दृष्टि भी साधारण नहीं, वृत्ति भी साधारण नहीं, कर्म भी साधारण नहीं, संकल्प भी साधारण नहीं, सर्व में दिव्यता, श्रेष्ठता, अलौकिकता, हर कर्म में दिव्यता, ऐसा अनुभव करते हो या कभी साधारण कर्म भी हो जाते हैं? साधारण कर्म हो गया अर्थात दिव्य बुद्धि इमर्ज रूप में नहीं है, उस समय अदिव्य हो गई है, साधारण हो गई है, लौकिकता आ गई है। दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाली आत्मा सदा अदिव्य को भी दिव्य बना देती, जैसे गायन है किसका, पारस का, जहां लगता है वो सोना बन जाता है, पर यहाँ बाबा ने कहा वो भी पारस बन जाता है। काल्पनिक पत्थर है, पारस पत्थर कोई होता नहीं है, पारस मणि फिलोसोफर स्टोन, इस पर बहुत सारी कथाएं हैं। और कहीं मध्य प्रदेश में कहीं एक मंदिर है, एक किला है, वहां रखा हुआ भी है, पर ऐसा कभी हुआ इसकी कोई कहानी है कि बदलती है,
बाबा है पारस,
क्योंकि बुद्धि हर बात को ग्रहण करती है, तो दिव्य बुद्धि दिव्यता को ग्रहण करेगी। कोई भी दिव्य बात अदिव्य बात हो जाए, अदिव्य कार्य हो जाए, उसको भी दिव्य बना देगी। तो चाहे वातावरण अदिव्य हो, बोल अदिव्य हो, चलन अदिव्य हो, कुछ भी अदिव्य हो, उसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। आज बाबा ने कहा वो आत्माएं सुना अनसुना कर देगी। बाप जो सुनाते हैं वो अनसुना अनसुना मत कर देना, और ये जो बातें होती है ये हियर नो इविल, उसको अनसुना सुना अनसुना कर देती, उनकी बुद्धि पर कोई भी चीज का असर प्रभाव इफेक्ट नहीं होगा। ऐसी स्थिति वाले को ही दिव्य बुद्धि वरदानी मूर्त कहा जाता है। उदाहरण वाटर प्रूफ, वो साइंस के साधन है और ये है साइलेंस के साधन, माया प्रूफ, मास्टर मायापति। कौन सा वर्ड यूज किया आज बाबा ने, मास्टर मायापति, लेकिन प्रभाव में आना और चीज है, ये ज्ञान होना कि ये दिव्य अदिव्य और चीज, पर उसको अनुभव करना ये एक और चीज है। तो बाबा ने कहा इसको कार्य में लगाओ, भूलना नहीं, भूलने की तो आदत है, अभी अभूल बनो, अभूल भूलने वाले नहीं, सदा याद रखने वाले। तो एक ये ऐसा यंत्र है बाबा ने कहा जो प्रकृति को भी दिव्य बना देता है, देने वाला सर्वशक्तिवान, कोई धर्मात्मा नहीं, कोई महान आत्मा नहीं, इसको सदा कार्य में लगाते रहो। अच्छा, ओम शांति।